नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में 153 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत प्रक्रिया पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 408 करोड़ 82 लाख रुपए की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का केंद्र से अनुरोध किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के विकास और क्रियान्वयन के संबंध में पहली बोर्ड बैठक की समीक्षा की, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और चंपावत जिले में जनगणना 2027 को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड में रह रहे 153 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दिए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। केंद्र और राज्य के गृह विभाग की ओर से विस्तृत जांच पड़ताल के बाद इनके आवेदनों की स्वीकृति से भारतीय नागरिकता दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। स्वीकृत आवेदनों में 147 लोग पाकिस्तान से और 6 लोग अफगानिस्तान से आए हैं। ये सभी 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेने वाले आवेदकों की श्रेणी में आते हैं। इनके परिजन पहले से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में निवासरत हैं, जिसके चलते इन्हें राज्य में आश्रय मिला। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि CAA के माध्यम से वर्षों से भारत में रह रहे शरणार्थी परिवारों को न्याय मिला है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।
सरकार CAA का कानून देश के अंदर लेकर आई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ऐसे हिंदू, ईसाई, बौद्ध जो भी हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता देने का जो बिल पास हुआ उसके तहत 153 लोगों को उत्तराखंड के अंदर भी गृह मंत्रालय ने माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में उनको मंजूरी दी है, नागरिकता दी है। और ये एक बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है, उन सब लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 408 करोड़ 82 लाख रुपए की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से अनुरोध किया है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी से अप्रैल 2027 तक आयोजित होने वाले कुंभ मेले में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। इसके दृष्टिगत गंगा की निर्मलता, स्वच्छता और अविरलता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री के साथ कुंभ की तैयारियों और नमामि गंगे से संबंधित परियोजनाओं पर केंद्रीय मंत्री से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 253 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की स्वीकृति, जल जीवन मिशन के तहत अतिरिक्त राशि जारी करने के साथ ही इकबालपुर नहर प्रणाली, कनखल और जगजीतपुर नहर की क्षमता विस्तार का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे असिंचित भूमि की सिंचाई के लिए 665 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे हरिद्वार जिले के भगवानपुर और लक्सर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। परियोजना से लगभग 13,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने का अनुमान है। साथ ही क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान भी होगा। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार कुंभ को दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा तथा गंगा संरक्षण के लक्ष्य को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने विभागीय कार्यप्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के प्रभावी समावेशन को लेकर आज 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। जिला सभागार में आयोजित कार्यशाला के पहले दिन 34 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञ विनीत ने AI तकनीक के माध्यम से कार्यालयी पत्राचार के मसौदे तैयार करना, डेटा संकलन व विश्लेषण, अभिलेख प्रबंधन, जन शिकायतों की निगरानी, रिपोर्टिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण आदि का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने एआई का उपयोग विभागीय सुरक्षा और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए करने की सलाह दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गहनता से प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक के उपयोग से जहां प्रशासनिक कार्यों में गति, पारदर्शिता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा, वहीं नागरिकों को अधिक प्रभावी और त्वरित सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।
आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आज सचिवालय में उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के विकास, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव से संबंधित विभागों, हितधारकों तथा कंपनियों के साथ पहली बोर्ड बैठक की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने रोपवे परियोजनाओं को प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इनके कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर बनने वाली इन परियोजनाओं के तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदनों सहित सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। देहरादून मसूरी रोपवे परियोजनाओं में हो रही देरी पर मुख्य सचिव ने इसकी प्रगति में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन, सरकारी निर्माण एजेंसियों, लोक निर्माण विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय स्तर पर आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की बात भी कही। चंपावत जिले में जनगणना 2027 के सफल, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं, तकनीकी व्यवस्थाओं और दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। देहरादून से आए सांख्यिकी अन्वेषण व प्रशिक्षक भावेश कुमार धीमान ने बताया कि अधिकारियों को जनगणना संबंधित प्रशिक्षण डिजिटल माध्यम से दिया जा रहा है।
चार्ज ऑफिसर जो बेसिकली तहसीलदार होते हैं और टाउन में ईओ होते हैं, उनके अंदर जो कार्यरत हैं, उन सबका प्रशिक्षण कार्यक्रम है 3 दिन का। जैसे इस बार सारे आपको आइडिया है कि जनगणना पूरी डिजिटल है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम उन्हें सिखाने के लिए आए हैं। जैसे एक पोर्टल है सीएमएस, इस बार नया बना है, तो उसके माध्यम से पूरा जनगणना की जाएगी, सारी प्रक्रिया उसमें करी जाएगी। तो उससे उनको हैंड ऑन बताना कि आप कैसे सेंसस कर सकते हो, जनगणना में कार्य कर सकते हो। और एचएलबीसी जो एक नया पोर्टल, वेब पोर्टल है, उससे आपको एचएलबी इस बार सारी ऑनलाइन कटेंगी, और ये सब उन्हें बताने आए हैं ताकि वो अपना कार्य सही से कर सके, उनकी जिम्मेदारी बताने आए हैं।
चंपावत जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित महिला समूहों द्वारा इन दिनों विभिन्न स्थानों पर बुराश, हल्दी, गेंदा, पालक, गुलाब, चुकंदर और मुल्तानी मिट्टी से जैविक रंग बनाए जा रहे हैं। इन रंगों को स्टॉलों के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से बेचा जा रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जिला मुख्यालय के नजदीक विंडा गांव की एक स्वयं सहायता समूह की महिला लक्ष्मी जोशी ने बताया कि सभी अभी तक उन्होंने 2.5 क्विंटल रंग तैयार कर विभिन्न स्टॉलों और सरस मेले के माध्यम से बिक्री के लिए रखे हैं। गांव की अन्य महिला राधा राणा और कमला बोहरा ने बताया कि वे खाद्य पदार्थों और फूलों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं।
कलर होली का कलर बना रहे हैं। ये होली का कलर हरी पत्तियों, फूलों से बन रहा है। इसमें मुल्तानी मिट्टी भी मिलाई जा रही है और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस कलर की बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे स्टॉलों में, और यहाँ सरस मेला चल रहा है, वहाँ ये कलर हमारे बहुत ज्यादा बिक चुके हैं। अभी भी हम बनाने में है, ये 1 फरवरी से बनाया जा रहा है। ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है।
आजकल हम कलरों में काम कर रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी, हरे पत्ते, गेंदे के फूल, इस चीज से हम कलर बना रहे हैं। ये सब जैविक है।
हरिद्वार की नगर मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान की अगुवाई में आज देवपुरा चौक से लेकर रेलवे स्टेशन हरिद्वार तक फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान बस स्टैंड के सामने रेलवे स्टेशन की दीवार से लगती हुई लगभग 80 अस्थायी दुकानें और रेहड़ी ठेली हटाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में 153 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत प्रक्रिया पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 408.82 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का केंद्र से अनुरोध किया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के विकास और क्रियान्वयन से संबंध में पहली बोर्ड बैठक की समीक्षा की, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और चंपावत जिले में जनगणना 2027 को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।